ॐ शं नो मित्र शं वरुण शं नो भवत्पर्यम शं न इन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीत श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति
शान्ति शान्ति
ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रने नाधीते नाहो रात्रांत संददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शांति 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मन ॐ शांति 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 ॐ भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवांसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रयिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं ममच्युर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्य तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 ॐ देवभूमि हिमालय के पादेश में सूर्यश्वरी भगवती गंगा माता के पावन तट पर समवस्थित ऋषिकेश में ब्रह्म विज्ञान केंद्र कला शासन जिसके पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से यह अध्यात्म विद्या हमने मुंबई में प्रतिष्ठापित है उनके सत्य संकल्प से। कल उनका निर्वाण महोत्सव उन सत्य निर्वाण महोत्सव सहर्ष पालन किया गया। इसके पूर्व भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भक्ति स्रोत भक्ति प्रवाह, यद्यपि भागवत में ज्ञान भी पर्याप्त है तो भक्ति प्राधान्य न कथा होती है, भक्ति भी आवश्यक है, भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग की प्रवृत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार ब्रह्मलीन स्वामी महाराज जी जिनके निर्वाण दिवस काल हुआ था, ऐसे महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए बार बार जितना हो सकता है नाम नहीं लेते हैं, नीला नहीं चाहिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं, ऐसे सामने नाम लेकर कहते आवश्यक अनावश्यक नाम नहीं लेते हैं। तो जब संस्था का नाम लेते तो लेना होता है, प्रसिद्ध है वो, यहां आकर के मायानगरी को प्रेमपुरी बना दिया। ये मायानगरी नहीं प्रेम नगरी है, पुरी का अर्थ नगरी है, प्रेमपुरी का अर्थ प्रेम नगरी है। इसका नाम मुंबई तो क्या गया, कोई पूछा इसका नाम प्रेम नगरी क्यों नहीं रखे, बोले प्रेम नगरी नाम रखेंगे तो फिर ये आश्रम का नाम कोई नहीं जान सकता है। कभी यहां आकर पूछेगा बॉम्बे का, हमको बॉम्बे जाना है, बॉम्बे कहाँ है, सब लोग क्या कहें टैक्सी वाले, ये बॉम्बे में आप आ गए। इसी प्रकार कुछ जाकर कहे बॉम्बे का नाम यदि प्रेम नगरी हो जाए, कोई कहे हम प्रेमपुरी आएंगे तो कहे प्रेमपुरी में तो आप आ गए, तो बॉम्बे है नगरी है प्रेम नगरी है, ये प्रेमपुरी बनाए, स्थान बनाए नहीं केवल, यहां वहां से प्रवाहित ज्ञान गंगा को ला करके यहां समुद्र में नहीं मिलाया, ये प्रेम नगर में मिलाया, प्रेमपुरी में बना दिया। वो आकर के ही प्रेमपुरी रूप से अभी विद्यमान है, वही प्रेम नगरी है, वही मायापुरी जो नाम था। भक्ति में पहले ज्ञान प्रवाह हुआ और भक्ति के साथ ज्ञान का क्या संबंध है, यह जो ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ 5 वर्ष पहले, ये स्पष्ट हो जाता है शास्त्र का सिद्धांत। जैसे वेद में है कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड है, इसी प्रकार कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय होता है। भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, और ज्ञान मार्ग में चलने वाले को भक्ति भी करनी है। भक्ति करने वाले को ज्ञान मार्ग का द्वेष नहीं करना चाहिए, और ज्ञान मार्ग में चलने वाले भक्ति की आवश्यकता ये समझनी चाहिए। ये भक्ति और ज्ञान का समन्वय कैसे होता है, यह स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी के संकल्प से ही यह प्रारंभ हुआ ज्ञान यज्ञ। क्योंकि वही ज्ञान लाए ज्ञान गंगा, जो यहां मायानगरी में भक्ति बना करके वो ज्ञान के साथ समन्वय बताया, जो कि शास्त्र का सिद्धांत है, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। तो यह आज से यह ज्ञान यज्ञ प्रस्थान तरह ज्ञान यज्ञ के नाम पर प्रारंभ होगा। ये प्रस्थान तरह ज्ञान के 5 वर्ष पहले हुआ था, ये ज्ञान मार्ग में जो भगवान श्री कृष्ण भागवत में मुख्य रूप से ध्येय पूज्य उपासनीय है, जिनकी लीला स्मरण आदि किया गया, वही भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल है, भक्त के अधीन हो जाते हैं भगवान, अपने भक्त प्रिय भक्त के सारथी बन करके, अभी बनने तक गए सारथी, किन्तु योग्यता जो जैसा है भगवान सारथी बनने पर ही भगवान ही है, कोई उनको सारथी नहीं, सारथी नाम कहेंगे तो भी उनका सम्मान होता है। भगवान गजानन कहेंगे गणेश को, हाथी के जैसे उनका मुख है तो गजानन कहेंगे गणेश प्रसन्न होते हैं, नहीं कि कोई कहेंगे हाथी के मुख जैसे कि हाथी के मुख तो उनका है गजानन। इसी प्रकार अर्जुन के सारथी कहेंगे तो भी भगवान श्री कृष्ण खुश होते, मेरा भक्त का नाम लिया तो खुश होते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण भी आचार्य बनकर उपदेश करते हैं, गीता का उपदेश करेंगे। प्रस्थान त्रय है ज्ञान ज्ञान यज्ञ में 3। वेदांत का सिद्धांत वेदांत दर्शन में व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा, ऐसे 6 दर्शन है आप लोग मालूम है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। न्याय है गौतम के न्याय है गौतम महर्षि का, वैशेषिक दर्शन है कोणाद महर्षि का, और कपिल महर्षि के सांख्य है, पतंजलि महर्षि के योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा जैमिनी महर्षि के है, उत्तर मीमांसा व्यास जी के है। 6 महर्षि के 6 दर्शन ये सब सोपान सीढ़ी अद्वैत साम्राज्य में अधिरूढ़ अभिषिक्त होने के लिए इसी सोपाने में आरूढ़ होकर के ऊपर जाना पड़ता है। न्याय के द्वारा नास्तिक मत का खंडन करके आत्मा किस प्रकार व्यापक, कोई कोई आत्मा को अनुमानते हैं उसका निराकरण कर युक्ति के द्वारा आत्मा कैसे व्यापक ऐसे सिद्ध किया गया, देह आत्मावाद का खंडन किया गया। इसी प्रकार वैशेषिक कणाद महर्षि, उनका नाम कणाद महर्षि क्यों मालूम है, खेत में से धान गेहूं काट कर ले जाने के बाद कुछ कुछ कण कण गिर जाएगा, धान गेहूं खेती में जाकर देखो रास्ता में कभी आप देखो खेती तैयार नहीं देखेंगे बॉम्बे में गेहूं धान काटने के बाद क्या ले लेंगे, लेने का तो कुछ कुछ गिर जाता है, जिसको चिड़िया खा लेते हैं चूहा भी ले लेते हैं, वो जाकर के उसको एक एक दाना चुन करके लाना, उसे कोई मना करेगा नहीं, लेने के बाद चिड़िया भी बढ़ते है चूहा भी खाती है, वहां जाकर के ले लेकर के इकट्ठी करके कणम अत्यति कणाद, वह कण को लेकर के वही खा करके रहना है, इसलिए उनका नाम कणाद महर्षि है। ऋषि महर्षियों ने इसे तप करके ग्रंथ शास्त्र में रख दिया, कितने कृपा हमारे ऊपर, क्या तप उन्होंने की, ऐसे एक एक थोड़ा सा बताता हूं। व्याकरण में जो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के आचार्य है, वो पाणिनि महर्षि के व्याकरण के ऊपर भाष्य लिखा, महाभाष्य उसका नाम, अन्य दर्शन के भाष्य तो नाम है भाष्य, किन्तु महर्षि पाणिनि के व्याकरण के ऊपर जो भाष्य उसका नाम महाभाष्य, जिनकी रचना महर्षि पतंजलि ने की, और वो महाभाष्य बड़े सुंदर भाषा है, सरल है कि इतने गंभीर है, उसको समझने के लिए एक एक कैट नाम है, उन्होंने उसके ऊपर व्याख्या लिखी, जिन्होंने व्याख्या लिखी इतने तपस्वी इतने लगन में लगे, तो मांग करेगा खाने के लिए काशी में रह करके लेगा, मांगने के लिए जाएंगे तो मिल जाएगा, किंतु वो मांगने के कहां समय जाने के लिए, मणिकर्णिका का घाट पर कहीं रहते थे आसपास कहीं, वो जो सब जलाने के लिए सब लाते हैं राम नाम सत्य करके जलाते हैं जो डाल देते हैं, वो कुछ अट्टा बनाकर पिंड पिंड कुछ बनाकर देते उस समय, वो क्या करते जो अट्टा पिंड बना हुआ सबको सब क्रिया कर्म करने के लिए जो अपवित्र मानते उसको छूते नहीं, छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा, वो समय से कुछ अट्टा ले लेते हैं, और लकड़ी कहां से लाएंगे, जो सब जलाने के कुछ लकड़ी बची गई अग्नि लेकर गुस्से में लेकर के उसमें बाटी हाथ में इसे करके करके बाटी ने उसको क्या करते मोटा मोटा रोटी बना हाँ टिकड़ बना करके वो खा करके फिर अपने ग्रंथ पढ़ना लिखना। बहुत विद्वान बन के एक लिखा है महाभाष्य स्पष्टीकरण, जब पूरा हो गया विद्वान बनेंगे घर में जा रहे थे, जाते समय रास्ता में खाने के लिए जैसे रास्ता में खाने के लिए पहले लोग लेकर जाते थे अभी लेकर जाते हैं, तो लेकर क्या जाएंगे उनके पास क्या था उसमें से कुछ आटा ले गए रास्ता में कहीं टिकट बनाकर खाएंगे, वहां टिकट बनाकर जो खाने के लगे सरस्वती उनके हाथ को पकड़ लिया माता देवी सरस्वती, उनके तपस्या से सरस्वती प्रकट होगी सामने हाथ पकड़ लिया अभी तुम्हारे खाने का अधिकार नहीं है, उस समय विद्यार्थी था तपस्वी था तब तुम खाने से स्वपचन हो गया ये अपवित्र, अभी आप प्रसिद्ध हो गए विद्वान हो गए आप इस समय इसको खाकर पचा नहीं सकते हैं अब इसको नहीं खाना है अधिकार नहीं है, देवी कैसे तपस्या से भगवान कैसे दर्शन देते हैं, जैसे यहां प्रसिद्ध है पिता माता की सेवा करते समय विठला भगवान के सामने भगवान श्री कृष्ण आ गए, ये आपके आस पास के इसलिए बताते हैं अत्यंत कोई इसमें बनावटी कुछ नहीं बिल्कुल सत्य है ये अपने सिद्धांत है, कोई गो सेवा करते करते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो इसे एक महर्षि के दर्शन में इसे बताया जैसे कणाद महर्षि थे ऐसे ये कहते किस प्रकार खा करके लिखा है, अभी ग्रंथ में पढ़ते हैं पढ़ने समझने के लिए भी बड़ा कठिन है, सब लोग पढ़ाने वाले पढ़ने वाले भी कम हो गए इतने कठिन है ग्रंथ जैसे दर्शन, तो सांख्य कपले के सांख्य ज्ञानी है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का संयोग योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा जैमिनी महर्षि इसके ऊपर व्याख्या लिखी कुमारल्य भट्ट ने, उसका नाम श्लोक भारती का 12 अध्याय ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय पूर्व मीमांसा में 12 अध्याय, 12 अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर एक ग्रंथ लिखा है इतने से बड़ा ग्रंथ श्लोक भारती का, उसके बाद एक प्रथम अध्याय का 3 पाद द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय इसके ऊपर जो व्याख्या उसका नाम है तंत्र वार्तिकम। तीन अध्याय के बाद आओ कितने बचा बोलो जल्दी। हाँ नौ अध्याय बचा। नौ अध्याय के ऊपर जो लिखा है उसका नाम है टुप टीका, जिसको इंग्लिश बोलने वाले फुट नोट कुछ कहते ना टुप टीका है लिखा है। तो जो श्लोक वार्तिक है वो एक ग्रंथ जिसके ऊपर पूरा नास्तिक मत का खंडन करके वेद नित्य है ये सब सिद्ध कर दिया। और जो वेद का खंडन कर रहे थे नास्तिका वेद निंदका, वेद की निंदा करने वाले नास्तिक है, अवैधिक मत चलाने वाले जो वेद विरुद्ध में थे उनका खंडन करने के लिए कुमार भट्ट ने बौद्ध सिद्धांत पढ़ा। बिना पढ़े उसका खंडन कैसे करेंगे, जाने बिना खंडन कैसे होगा, तो पढ़ करके खंडन किया था। तो जिस किसी प्रकार हो कहीं से पढ़े यद्यपि खंडन करने के लिए पढ़ा तो भी यदि विद्या का ग्रहण करते तो गुरु हो गए। तब उनका खंडन किया तो इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए गए थे, कर रहे थे कहां प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग में। एक दोष उनका था कि गुरु का विरुद्ध किया, और दूसरा दोष पूर्व मीमांसा में ईश्वर नहीं मानते हैं। नहीं मानते का था वो कुमार भट्ट नहीं मानते, जैमिनी महर्षि नहीं मानते, ये बात नहीं। दर्शन में वहां वेद प्रमाण है, कर्म करना है, जैसे कहा गया ऐसे कर्म करना, ईश्वर के नाम लेकर कुछ बनावटी करने का नहीं। भगवान है आप कर्म करो फल मिलेगा, शास्त्र विहित है तुम इसी प्रकार कर्म इसी वर्ण के इस आश्रम के है, तुम्हारा यह कर्म करने के अधिकार है इसको करना, और कर्म में अधिकार नहीं तो नहीं करना। अपने मन माने नहीं चलेगा हम करते हम सदार से करें वैसा नहीं। कर्म प्रधान करने के लिए ईश्वर का नाम नहीं लिया, कर्म करेंगे फल देने वाले फल देंगे। और वैदिक मार्ग में चलो रास्ता पर आ जाओ, अवैधिक मार्ग छोड़ करके वैदिक मार्ग पर चलो, वेद विहित कर्म करो, धर्म बताएंगे वेद विहित कर्म करो तो वेद विहित प्रयोजनवत अर्थवत धर्म ऐसा बताएंगे धर्म जो प्रारंभ करेंगे। तो इसीलिए ईश्वर का खंडन किया, क्योंकि महर्षि जैमिनी का मत है उसके ऊपर व्याख्या लेकर, व्याख्या तो सावर स्वामी ने भाष्य रचना की उसके ऊपर इनके वार्तिक, जैमिनी महर्षि के सूत्रों के ऊपर सावर स्वामी ने भाष्य लिखा, उसी भाष्य की व्याख्या कुमार लेफ्टन लिखा। तो ये दो के दोष के कारण प्राचित कर रहे थे, क्या कैसे प्राचित, धान के तुष होते चिल के वो इकट्ठे करके उसी में अग्नि रह करके अग्नि जलाए, वो जलाने पर कोई किरोसिनी, आजकल कोई किरोसिनी पेट्रोल डाल के जला करे, कोई आत्महत्या कोई किसको जला देते, वैसे एक साथ जल जाएगा नहीं, एक साथ जल गया तो मर जाएगा जल्दी, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। वहां रह कर तूस में लगाएंगे अग्नि गर्म होते होते पूरा घर गर्म होकर के शरीर में कुछ अंश जल गया कुछ अंश ही। भगवान भाष्यकर जगत गुरु भगवत पाद ने ऐसे ऐसे परिक्रमा करते करते जाकर वहां पहुंच गए। कुमार भट्ट ने उनको कहा था और कुछ वार्तालाप है, कुमार भट्ट ने कहा था तब तक मीमांसा के ऊपर व्याख्यान उन्होंने लिख दिया था। कुमार भट्ट बहुत बड़े विद्वान थे और बड़े ज्ञानी थे, उनके सिद्धांत में ईश्वर भी मानते हैं, अद्वैत वेदांति मानते हैं, ये सब प्रमाण है भारतीय में है, मालूम है हमको, कभी बताएंगे। तो वो कहे मेरे भाग्य में नहीं कि आपके भाष्य के ऊपर व्याख्या लेकर के यश प्राप्त करने के लिए मेरे भाग्य में नहीं है, न तो दुखी हो कि मैं आपके भाष्य जो आपके अध्यास भाष्य में देखता हूं इतने इतने श्लोक भारतीय बनने का है, वो देख करके विचार कर लेते इतने ग्रंथ बन सकता है, इसके ऊपर इतने श्लोक बनेगा, शंकर दिग्विजय में कहा अभी याद नहीं, इतने ऊपर इतने श्लोक मुझे दिखता है बन जाएगा जैसे आप कहीं जानने के लिए करते हैं ना, इधर जाएंगे उधर जाएंगे कुछ कार्य करें मन से अचल रहेंगे, आज सब कौन से योजना बनाते हैं, अब कहीं जाना है कुछ करना है विचार कर लेते, मकान बनाने वाला पहले मंदिर बनाने पहले सोचता कितने ऊंचा बनाएंगे कई बंदा बनाएंगे करके शुरू करता है। इसी प्रकार ग्रंथ करने वाले उनकी योजना क्या है, कितने ग्रंथ बनाएंगे इसके ऊपर कितने श्लोक बन सकता है बता दिया, शंकरवृद्धि के विजय में हमको दिखता है इतने श्लोक बन जाएगा, किन्तु मेरे आगे में नहीं। भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं आपको जीवित कर लेता हूं, सत्व बना देता हूं, मरे नहीं किन्तु कुछ कुछ जल गया था, अब सत्व बना देता हूं आप इसके ऊपर भारती के लिखे। तो फिर कुमार भट्ट ने कहा नहीं मैं प्रारंभ कर लिया प्राचित करने के लिए, संकल्प ले लिया और नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं। मेरे जैसे विद्वान है, मेरे शास्त्री मंडन मिश्र के पास जाइए, शास्त्रार्थ कर प्राप्त कीजिए, वो आपका शिष्य बनेगा। और भाष्य लेके करके फिर सर्वेश्वराचार्य बने, उन्होंने भारतीय लिखे, ऐसे हुआ। ऐसे कुमार भट्ट थे मीमांसा दर्शन के पर, तो वहां कर्मकांड में कर्म प्रधान कहने के लिए ईश्वर मत का खंडन किया था। उसके बाद ही उत्तर मीमांसा, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा में कर्मकांड पूरा है, उसके बाद उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन के आचार्य है व्यास जी, सब सबका गुरु, वो दर्शन के जो आचार्य ब्रह्मसूत्र है उसके पर भाष्य रचना की भगवत पाद जगदगुरु ने। और यह संप्रदाय उसको कहा जाएगा जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर और 10 उपनिषद और एक गीता, जिनको प्रस्थान त्रय रूप से कहा जाता है। प्रस्थानानाम त्रयम, प्रस्थान त्रयम, प्रस्थान है मार्ग, प्रस्थियत अनैनैति प्रस्थानम, जिसके द्वारा जाते हैं, जाने के लिए तीन मार्ग है पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, जाने के लिए अर्थात मार्ग पर चलना साधन करने के लिए, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में 10 उपनिषद है, तो वेद में 1180 शाखा है संपूर्ण वेद में, कितने 1180, सबसे कम शाखा है ऋग्वेद में 21, उसके बाद अथर्ववेद में है 50, यजुर्वेद में 109, कितने हुआ जल्दी बोलो, है ठीक 180 हुआ, केवल 21, 109, 50, 180 हुआ, और बाकी के और 1000 शाखा सामवेद में। अभी कठिनाई हिसाब करने की कठिनाई नहीं हुई ना, कितने हो गई 1180, 1180 में से 1000 शाखा सामवेद में, उसके बाद दूसरा नंबर यजुर्वेद में 109, उसके बाद अथर्ववेद में 50, और कितने बचेगा 21 है ऋग्वेद में, कितने शाखा हो गए 1180। प्रत्येक शाखा में कर्मकांड उपासना है, ज्ञान कांड भी है, वेद में कर्म उपासना ज्ञान, ज्ञान कांड में जो मंत्र है उसको उपनिषद ब्रह्म ज्ञान कहते। प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद है, वेदिक अंत में वेदांत उसका नाम, वेद के सार, वेद का तात्पर्य। प्रत्येक शाखा में एक तो उपनिषद कितने होनी चाहिए 1180 होनी चाहिए। आजकल सब उपलब्ध नहीं, मुद्रित है 200-250-300 के अंदर कुछ है, उनमें उन संख्या के सौ का 108 उपनिषद पुस्तक अन्य भी है, मुक्ति का उपनिषद एक है, मुक्ति का उपनिषद, उसमें उस शाखा का नाम है, संख्या भी कही गई है। उसमें से जिस क्रम से उपनिषद का नाम आया उसी क्रम से 10 उपनिषद के पर भाष्य रचना की भगवत्पाद भाष्य का जगदगुरु शंकराचार्य ने, और अन्य अन्य आचार्य ने भी उसी 10 के पर भाष्य रचना की। ईश के न कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरीय ऐतरीय सांधुक्य बृहदारण्य के 10 उपनिषद, इसको कहते श्रुति प्रस्थान, श्रुति मार्ग, वेद मार्ग है, तो श्रुति मूल प्रमाण, किंतु उसका तात्पर्य निर्णय करने के लिए दर्शन शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, व्यास जी ने इसके ऊपर बनाया। और श्रुति के बाद स्थान है स्मृति का, श्रुति स्मृति पुराण आलय बोलते, श्रुति और स्मृति और पुराण का आलय गृह है, जैसे पुस्तकालय बनाते हैं ना, सारे पुस्तक रखते उसका नाम पुस्तकालय है। अब भगवत जगत जगत गुरु भगवत पाद शंकराचार्य क्या थे, श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलय, बड़े पुस्तकालय, बड़े लाइब्रेरी, श्रुति स्मृति पुराणा नाम सबका, सारे श्रुति सारे स्मृति सारे पुराण का गृह उनके बुद्धि में सब हुए। केवल विष्णु सहस्त्र नाम केवल भाष्य देखो, उसे पता चलेगा एक के नाम कहां से किस पुराण से आया, क्यों नाम बना, वो जो लिखा है उसको पढ़ कर समझना कंठस्थ रखना कठिन है, वो अपने आप लिखा है किस, ये नाम कहां आया, किस पुराण में आया। तो उन्होंने भाष्य रचना की उपनिषद 10 उपनिषद के पर, और स्मृति में पुराण बहुत ही है, तो महाभारत के अंतर्गत श्रीमद भगवद गीता इसका ग्रहण किया गया, इसके ऊपर भाष्य रचना किया। अब ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान, तीन प्रस्थान हो गया, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, न्याय अधिकरण बना करके ब्रह्मसूत्र के ऊपर तीनों का समय है त्रयम, प्रस्थान नाम त्रयम, प्रस्थान त्रयम, प्रस्थान त्रय भी कहा जाता है। ये पांच वर्ष पहले हुआ था गीता, दो वर्ष में उपनिषद, दो वर्ष में ब्रह्मसूत्र, पांच वर्ष में पूरा हुआ। अभी वही ब्रह्मेन्द्रनाथ स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के निर्वाण दिवस से पहले भागवत कथा हुई, अभी भक्ति के साथ ज्ञान का समन्वय करने के लिए ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ, इसमें यहां महाभारत में प्रसंग कैसा है, कहां भगवत गीता का उल्लेख है। तृतीय खंड में भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, इसमें त्रयोदश अध्याय, तेरहवां अध्याय में संजय उवाच। संजय आकर के धृतराष्ट्र के पास पहुंच करके कहते हैं, संजय हम महाराज नमस्ते भरतर सव, हतो भीष्म शांतनवो भरतानां पितामह। हे महाराज, युधिष्ठिर संबोधन करता है संजय, मैं संजय हूं, हे भरत श्रेष्ठ आपको नमस्कार। शांतनव शांतनु के पुत्र भरतवंश के पितामह भीष्म हतः मारे के सरल सज्जा पर आ गए, भीष्म पितामह सरल सज्जा के पर आ गए। उसके बाद संजय आकर के धृतराष्ट्र को बताते ये समाचार दिया। त्रयोदश अध्याय में धृतराष्ट्र सुन करके चतुर्दश अध्याय में आया, बड़े दुखी हो गए कि भीष्म चले गए मतलब हमारे पुत्र का तो पुत्र की पराजय हो जाएगा, किंतु भीष्म पितामह इतने कैसे है, तो सरस्वती जाए आ गए, मृत्यु कह करे हत मर गए, शरीर रखा उनके सामर्थ्य था पितावर प्राप्त किए थे किंतु हत, तो मृत्यु उनका कैसे कैसे संबंध है, कैसा संभव है, क्या क्या हुआ, ये प्रश्न पूछा चतुर्दश अध्याय में। पंचोदश अध्याय में उसका उत्तर दिया। सोलह सत्रह अठारह अध्याय में कौरव सेना कैसे कैसे आरंभ हुआ, कैसे थोड़ा युद्ध आरंभ होने के लिए क्या क्या हुआ, पांडवों कैसे व्यूह रचना की उन्नीसवें अध्याय में कहा गया। बीसवें अध्याय में दोनों सेना की स्थिति कही गई, कौरव सेना का अभियान बीसवें अध्याय में आया। इक्कीसवें अध्याय में युधिष्ठिर का विषाद दुख, युधिष्ठिर दुखी होते हैं कि इतने बड़े सेना कौरवों की, हम क्या करेंगे, कैसे उनको जीतेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, बड़े दुखी हो गए। जो दुखी हो जाते हैं वह अर्जुन उनको समझाते हैं इक्कीसवें अध्याय में। युधिष्ठिर विषाद अर्जुन का आश्वासन, फिर पांडवों की रण यात्रा शुरू होती बाईसवें अध्याय में। त्रयोदश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के निर्देश से अर्जुन दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, कौन सा अध्याय, तेईसवा, त्रयोदश शुरू हुआ, तेईसवा अर्जुन दुर्गा स्तुति करने के बाद वर प्राप्त करते हैं। छब्बीसवां अध्याय में दोनों में सेना में हर्ष उत्साह विषय का धृतराष्ट्र प्रश्न, कैसे हर्ष उत्साह कैसे हुआ कैसे न संजय बताते हैं। ये सब विषय में फिर ये धृतराष्ट्र पूछते हैं, ये कैसे कैसे सब घटना हुई थोड़ा हमको विस्तार अच्छी तरह से बताओ, ये बच्चों ने क्या 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 क्या, यही आया जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहां शुरू हुआ, पच्चीसवें अध्याय से शुरू हुआ। तेरहवें अध्याय में आकर के संजय बता दिया भीष्म पितामह हत मर गए। पच्चीसवें अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभ हुआ। अष्टादश अध्याय है बयालीस द्विचत्वारिंशत, बयालीस अध्याय में गीता समाप्त हो गई। उसके बाद त्रयालीस अध्याय में गीता महात्म्य आया, गीता समाप्त हो गया। अभी घटना हुई थी पहले सुना रहे इतने दिन के बाद, कब सुना रहे, भीष्म पितामह समाप्त होने के बाद संजय आकर के धृतराष्ट्र के पास सुनाएंगे गीता, अभी सुनाए, कब सुनाए, भीष्म पितामह मरने के बाद, किंतु गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने पहले किया था, पहले क्या था, कब क्या था, वो कहते ये उसको बताया जब युद्ध प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ होने के लिए ये प्रारंभ, पहले गीता समाप्त हुआ, गीता समाप्त होने के बाद गीता महात्मा आया। गीता महात्मा जो श्लोक बोलते हैं ना, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन शास्त्र व्यक्तर ही, ये प्रथम श्लोक गीता महात्मा में आया, 43 अध्याय में महाभारत में, भीष्म पर्व में, गीता पर्व में, गीता भगवद गीता पर्व में 43 अध्याय में गीता महात्मा, उसमें प्रथम श्लोक गीता सुगीता कर्तव्य आया, इसमें आता है। द्वितीय श्लोक सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनु, द्वितीय श्लोक है उसी 43 अध्याय में, त्रिचत्वारिशत तम अध्याय में द्वितीय श्लोक है। सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता सर्वशास्त्रमय है, सर्वदेवमय हरि, हरि भगवान सर्वदेव है, सर्वतीर्थमयी गंगा, यहां गंगा का कोई प्रसंग नहीं है किंतु शास्त्र का सिद्धांत है गंगा सर्वतीर्थमयी गंगा, कलो गंगे व तीर्थ, कल में गंगा ही तीर्थ है, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो मनु, सर्ववेदमय सर्ववेदमयो मनु, मनुस्मृति वैदिक सिद्धांत है सारे वेदमय मनु। इसके बाद तृतीय श्लोक है गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक में बोलूंगा एक पाद, फिर आप लोग बोलना इसमें क्या। देखो गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते गोविंदेति हृदय स्थिते गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। बड़ा सरल श्लोक है, कुछ नहीं, गीता गंगा च गायत्री गोविंद, पहला है गीता, दूसरा है गंगा, तृतीय गायत्री, चतुर्थ गोविंद, इति हृदय स्थित, ये हृदय में रह जाए, बुद्धि में स्थिर हो जाए। ये कैसा क्या है, चतुर्गकार संयुक्त, सब आगे में ग है, गीता में ग, गंगा में ग, गायत्री में ग, गोविंद में ग, गो माता में तो ग है ही, गो माता तो सर्वत्र विद्यमान है, व्याप्त है, ये चार गकार का नाम है, गो का नाम उसमें नहीं है, तो वो तो बहुत निकलेंगे, चार गकार कहे दिन से ये यदि भी रह गया हृदय में, गीता गंगा गायत्री गोविंद भगवान श्री विष्णु, इनके रह गया तो पुनर्जीवन नहीं होता है, ये उसमें आया गीता महात्मा के बाद, ये तृतीय श्लोक है। आगे श्लोक संख्या बताया, षट शतानी सविंशानी श्लोका नाम प्राह केशव, केशव ने कहा 620 श्लोक, अर्जुन का 57 और सप्तषठी, सत्सठ संजय का, संजय का श्लोक अर्जुन के पियादि का, धृतराष्ट्र का तो एक श्लोक है, धृतराष्ट्र श्लोक में एकम गीताया मानमुच्यते। इसके बाद गीता का उपदेश के बाद युद्ध कैसे हुआ बताएंगे, युद्ध तो पहले हो गया, पूरा समाप्त तो नहीं, पिता भीष्म पितामह सरस्वती अध्याय में आ गए, संजय आकर के सुना रहे हैं, पहले पहले से घटना बताने के बाद गीता पूरा उपदेश हुआ, कैसे युद्ध हुआ सुनना चाहते धृतराष्ट्र, खाली गीता सुनने के लिए नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्ध माम का पांडवा से किम करबत, क्या 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 हुआ ये सब सुनना चाहते, तो गीता का नाम मालूम नहीं था, वो तो समय युद्ध कैसे हुआ, कैसे पहले युद्ध किसने किया, बाद में क्या, किस प्रकार युद्ध हुआ, कैसे ऐसे हुआ सुन लिया था, अर्जुन भीष्म पितामह सरस्वती जन आ गई, किन्तु कैसे कैसे हुआ थोड़ा ठीक से विस्तार के साथ अच्छी तरह से बताओ, तो उनको बताते समय जब गीता उपदेश है हो गया। हठात युधिष्ठिर अपने सब अस्त्र आदि सब फेंक कवच से फेंक करके और रथ से नीचे आ गए, आकर के कौरव सेना में प्रवेश कर रहे हैं। सब भाई लोगों का आश्चर्य है, ये क्या बात है, अभी युद्ध शुरू होने वाला है और उनके अंदर जा रहे हैं सब छोड़ करके, उनके पीछे भाई जा रहे हैं, क्या कहां जा रहे, कहां जा रहे, क्यों जा रहे हैं, ये भी पीछे चले, एक एक करे पांच सौ भाई चलते हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण कहते मुझे मालूम है क्यों जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वासुदेव ने कहा, अनुमान्य सर्वशास्त्रम यस्तु युद्धेत महत्तरे ध्रुवस्तस्य जयो युद्ध भवेदिते मतिर्मम। तो वो गए किसलिए, प्रवेश करने के बाद सब लोग पीछे पीछे गए, अन्य राजा लोग सोचते ये कितने कापुरुष है, वीर हुए, ये कितने बड़े युद्ध है, अभी साथ जा रहा है माफी मांगने के, युद्ध डर गया, युद्ध डर गए, ये अर्जुन के पीछे अर्जुन जैसे भीम जैसे उनके साथ ही क्या डर गया, क्षत्रिय का तो युद्ध से अपलायन भागना नहीं चाहिए, युद्ध में क्षत्रिय का धर्म है मरना अच्छा है, कभी पीछे जा उनके यहां प्रवेश कर रहे माफी मांगने के लिए शायद, क्या बात है। वो गए थे किसलिए, जा करके पहले पहुंचे भीष्म के पास, द्रोण कृप शल्य चार के पास क्रम से, भीष्म जी के पास जाकर के प्रणाम कर रहे, आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रणाम कर रहे, आशीर्वाद मांग रहे, हम कैसे जीतेंगे, हमको आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पिता में खुश हो गए, तुमने ठीक किया अनुमति लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया, नहीं तो तुम्हारे पराजय हो जाती, अर्थात अभी तुम्हारी ये कहता अर्थ से पुरुषो दासो दासत्व अर्थ न कसे चीजी, वहां कहते पुरुष तो अर्थ का धन का दास है, और अर्थ किसका दास नहीं होता है, दासत्व अर्थ न कसे चीजी, अर्थ किसका दास नहीं, पुरुष अर्थ का दास है। सब लोग कहते हम धनी के स्वामी, धनी के स्वामी नहीं, धन का दास उसकी रक्षा करते हैं, अर्थ किसका दास नहीं होता है, ये कह करके हम उसके राज्य में स्थित है, उसके अन्न खा रहे हैं, इसलिए हम उसके अधीन है, अभी तो युद्ध तो हम उसके तरफ से करेंगे, बाकी तुम जो मानना मांगना है मांग ले लो, युद्ध को छोड़ करके मैं तो उसके तरफ से युद्ध करूंगा, क्योंकि उसके भोजन करा, उसके राज्य उसके अधीन में हूं, और बाकी तुमको जो मांगना है ले लो। ये कहे ठीक है आप उनके तरफ से युद्ध कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हम कैसे जीत जाएंगे, आशीर्वाद दे रहे तुम्हारे जय हो जाएंगे। फिर बताया वहां पूछते हैं आपको हम किस प्रकार मारेंगे, ये तो असंभव है, कहते वो इसके भी मैं बताऊंगा समय आने पर बता दूंगा वो भी आगे आगे बीच आगे जो एकदम थक जाएंगे, क्या संभव नहीं, अभी तो भीष्म पिता बड़े हो करके कर दे, सब लोग थके तो ये तो बड़ा असंभव हो जाएगा, फिर उनके पास जाएंगे बताएंगे हम आपको कैसे मारेंगे, फिर वो बता दे किस प्रकार मारना है। उनके बाद गए किसके पास, द्रोणाचार्य, वो आचार्य गुरु है, वो भी ऐसा ही कहा तुमने बहुत अच्छा किया, आया शिष्टाचार पालन किया, नहीं आता तो तुमको तो तुम्हारे पराजय हो जाती। फिर वो अर्थस्य पुरुषदास है, उस लोग को बताते तुम जो मांगना मांग रहे, उनसे भी आशीर्वाद ले लिया कैसे हम जीतेंगे, वो आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद गए कृपाचार्य के पास, सल्ले के पास, सबने आशीर्वाद दिया, सबसे आशीर्वाद लेकर के फिर आकर के फिर युद्ध। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा था जो गए सब लोग आश्चर्य क्यों जाते, भगवान श्री कृष्ण कहते मुझे मालूम है क्यों जा रहा है, ये जा रहे आशीर्वाद लेने के लिए, और ये बड़ों का आशीर्वाद लेकर कोई कार्य करते हैं अवश्य सफलता की प्राप्ति होती है। कैसे ये परंपरा अपने शिष्टाचार पालन करने में अग्रणी युधिष्ठिर गए युद्ध करने के पहले जाते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेकर आते हैं युद्ध करने के लिए। इसके बाद वह फिर गीता समाप्त, इसे प्रसंग बता दिया, उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ से प्रारंभ तो पहले हो क्या हुआ था, युद्ध होने के बाद विश्व पितामह सरसजाय में आ गए, उसके बाद संवाद सुना रहे, फिर किस प्रकार हुआ करके यह प्रसंग है। तो जो भगवान का उपदेश है वो उपदेश को सुनाए संजय ने, कब भीष्म पितामह सरसजाय में आने के बाद संजय धृतराष्ट्र को सुनाया, ये प्रसंग है, उसके बाद गीता का प्रारंभ होगा, किंतु गीता प्रसंग इस प्रकार है। इसमें गीता प्रारंभ करने के पहले जब गीता पाठ करते हैं, कुछ करण्यास आदि करते हैं और उसमें गीता महात्मा भी है, बहुत लोगों ने पूछा इसके कुछ मालूम नहीं, खाली करते हैं। अभी मैं इसको बताता हूं एक एक करके, फिर हम बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे। जैसे करण्यास होता है, पाठ करने के पहले भी कुछ कार्य करते हैं, अंग शुद्धि करण्यास शुद्ध होकर के भगवान से प्रार्थना करके पाठ करना चाहिए। ये नहीं कि जूता चप्पल पहनकर खट में बैठ कर कुर्सी पर बैठ कर आराम से गीता लेकर पढ़ा, वो पढ़े कोई बात नहीं, कोई पढ़ते तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जो मुमुक्ष है, भक्ति भक्त है, शुद्ध हो, पवित्र पुस्तक लेकर के शुद्ध हाथ में लेकर पाठ करे, करण्यास अंग शुद्धि आदि करके पाठ करना होता है, तब फल अधिक होता है। सामान्य सब का अनुभव है, अब ऐठे उठ करके स्वयं शौच करके भगवान का नाम लेते हैं और स्नान आदि करके सब तैयार होकर आकर भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर में जाते कितने फर्क होता है, शुद्ध होने पर मन में पवित्रता, इसलिए मंदिर में जाते हैं, मंदिर सुगंध गंध पुष्प धूप दीप आदि देकर बैठते हैं, पवित्रता है। तो इसे करण्यास में सब बोलते हैं, मैं सबको बहुत को मालूम है, तभी मैं उच्चारण करूंगा, इसमें मात्र उच्चारण करना, ओम अस्य श्रीमद भगवत गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता अशोच्यानन्द शोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम्। अशोच्यानन्द शोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यंगुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनेभ्यां नमः। अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः। नित्यः सर्वगतः स्थानु रचलोयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यास हाथ का न्यास रखना। पहले ओम अस्य श्रीमद भगवत गीता माला मंत्र से, गीता माला मंत्र रूप है ये, गीता माला मंत्र गीता ही पाठ करने के लिए, इसका भगवान वेदव्यास ऋषि ऋषि है, सब का ऋषि छंद देवता इनका ज्ञान होना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। पहले उनको भगवान वेदव्यास ऋषि है, इसमें छंद अनुष्टुप छंद है, मंत्र का छंद कहा होता है, इन्हें कि सारे श्लोक अनुष्टुप होना चाहिए था नहीं, कोई के मंत्र में कोई श्लोक नहीं तो भी छंद, तो अनुष्टुप छंद। इसमें देवता कौन है, श्री कृष्ण परमात्मा देवता। और बीजम सर्वत्र ऐसे बीज शक्ति कीलकम आदि रहता है, कुछ मंत्र जप करने के लिए करने पर बीच में विघ्न नहीं होता है, अशुभ लोग नहीं आएंगे, तमोगुण रजोगुण नहीं आएगा। निर्विघ्न का कार्य सिद्ध करने के लिए ये करना होता है सब मंगल कार्य में। इसलिए पहले बोलते हैं असत्यान अन्न शोचस्तम प्रज्ञा बाधा चवास, ये भगवान का प्रथम उपदेश। पहले देखो पश्चिम में देखा, ये आरंभ करते सांत्वना दे दे, उसका अर्थ तो आ जाएगा। इतने अशोच जो शोचनीय है उनके लिए शो करते हो, शोक निवृत्ति शास्त्र का तात्पर्य। इतने पहले प्रज्ञा बाधा से बुद्धिमान के भाषण करते हो, ये बीज मूल कारण हो गया। और अंत में सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरण ब्रजो, ये शक्ति है, शक्ति चाहिए। और अहम तो सर्व पापी वे मोक्ष इच्छामी, तब से मां सोचो यदि कीलकम, मार्ग में चलने के लिए चक्र होता है ना, चक्र की रक्षा करने के लिए कील लगाते हैं, कहीं कीलक मजबूत रहेगा, दोनों ऐसे रहता है, दोनों दोनों तरफ कीलक रहेगा, तब ये नहीं तरह तो चक्र नहीं गिर जाएगा। कभी लगाते तो कील लगाते ठोकते मजबूत कर रखते हैं, नट बोल रहे ना टाइट कर रखते, नहीं तो गिर जाएगा ये कीलकम। नैनम छिंदंती सत्राणी आत्मा के लिए कहती नैनम दोहती पाप को, ऐसे कह करी थी अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगुष्ठ ये अंगुष्ठाभ्याम नमः। न चेरम क्लेद इंत्याप न सुसहती मारुत कह करके, इसको ना पानी गिला करते सुखाते नहीं वायु, इति ये तर्जनी तर्जनी भ्याम, ये दोनों से नमस्कार तर्जनी भ्याम नमः। अचेद्यो अयम अदाह्यो यम अक्लेद्यो या अक्लेद्यो सच्चे वच, छेदन करने योग्य नहीं, दाह नहीं होता है, गीला नहीं होता है, सुखता नहीं, ये आत्मा है। इसको कह रही मध्यमाभ्याम, ये मध्यमा मध्यमाभ्याम नमः, ये बोलते पाठ करते समय करना मध्यमाभ्याम नमः, भगवान का नमस्कार ये मध्यमा जोड़ करके नमस्कार करना पड़ता है भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक। आगे नित्य सर्वगत स्थान रचल एवं सनातनम, इत अनामिका अनामिकाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः। पश्य में पार्थ रूपाणि शत शत सहस्र, भगवान विश्व रूप में बताते थे कनिष्ठिकाभ्याम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। आगे नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृति नीचे तो देखा है कैसे रूप है, कर तल और कर पृष्ठ, ये पीछे 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 हाथ का कर तल और कर पृष्ठ, ऐसा नहीं करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ये पीछे ये नमस्कार किया। अब हृदय आदि न्यास करते समय हाथ को रखना है, अच्छा इसको अभी मैं नहीं, पहले हृदय आदि न्यास करते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक इति हृदयाय नमः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा, अचेद्यो यम दाह्यो य मक्लेद्यो शस्य एव च इति शिखायै वसत्। नित्यः सर्वगतः स्थानो रचलोयं सनातन, रस बोलना रचलोयं सनातन इति कवचाय हुम। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति निच इति अस्त्राय फट। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग, हृदयादि न्यास, ये पहले इतना अर्थ तो सामान्य है, उस श्लोक का स्मरण करके इसके छत्र छेदन नहीं करते, अग्नि नहीं जलाते आत्मा को, इति हृदयाय नमः, हृदय में अस्त्र रखने का, ये बोलते समय इति हृदयाय नमः, हृदय में आत्र करना। न चेनम क्लेदे इंत्याप न सोचती मारू तो पहले आ गया है, इति शिर से स्वाहा, ऐसे शिर में आत लगाना, शिर से स्वाहा, इसे शिर से स्वाहा। अच्छे देव कह कर सिखाए ऐसा लिखे सिकाए बसत, शिव से सुहा सिकाए बसत नित्य सर्वगत स्थानु रचल सनातन थी कवचा हम कहते समय दक्षिणादि के कनिष्ठ का मूल यहाँ रहेगा और बाएं हाथ के कनिष्ठ मूल यहाँ रहेगा कवचाए होम। ये कवच रक्षा करने वाले उसको करते समय हाथ करे भगवान से प्रार्थना करे, ऐसे करते समय देव भगवान श्री कृष्ण के सामने चरण में बैठ रहा हूं बैठा हूं, और यदि कोई भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त किसको मानते थे करते तो कोई आपत्ति नहीं, पर ब्रह्म किस रूप से हो यदि सन निराकार चिंतन करे, कोई भी पर ब्रह्म परमात्मा कोई एक है जिनके स्तवन हम कर रहे तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में बैठकर इसे कवच है हम। ऐसे करने के बाद नेत्र त्रय बहुसठ स्पर्श में सत्तर रूपानी सात सौ सात सौ सात नेत्र तय में तो दो तय और एक यहाँ तीन, तो दो नेत्र में इसे दो आंक रखने के लगाने का ऐसा लगाने का, और कोई कोई इसे तीन कर देते हैं कि नहीं इसे करने का है दो, और अपने आप ही तृतीय तो है त्रय औसत। और आगे नाना बना कर दिया अस्त्राय फट, इसे पहले ऐसे दो उंगुली दे दिया फिर इसके चोटी के लिए करते इतने। अभी ये मैं प्रारंभ से मैं बोलूंगा मिलकर मेरे साथ मिलकर के बोलना, जैसे बोलते हैं सामूहिक पाठ करते समय सब लोग पाठ करते हैं गीता पाठ भी करेंगे जो सर्वत्र सबको बहुत मालूम है ठीक है, किंतु सामूहिक करते कम, समूह में करते समय कोई आगे कोई पीछे ऐसे हो जाता है, समूह पाठ ऐसे हो कि सुनने वाले को लग गया सब मिलकर पाठ करते वेद पाठ करने वाले बहुत लोग मिलकर करते हैं एक साथ वो पाठ करते हैं महिमनादि पाठ गीता पाठ जो करेंगे सामूहिक एक स्वर से संघ में बल होता है, सब मिलकर भजन करते तो परमात्मा प्रकट हो ही जाते हैं, बहुत बहुत एक साथ रोएंगे तो परमात्मा कहा परमात्मा तो वहां है ही, वो तो अंदर है वो सामने प्रकट हो उतना आचरने लग जाएंगे, इसे सब श्रद्धा भक्तिपूर्वक एक साथ पाठ करना है। ऐसे मैं बोलता हूं धीरे धीरे बोलने का दौड़ने का नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ करन्यासः। अभी मेरे साथ मिलकर बोलने का ओ बोलो ओम अस्य श्रीमद् भगवत गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्न शोचस्त प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम् नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यंगुष्ठाभ्याम नमः। अब ये करते समय ये भी करना इत्यंगुष्ठाभ्याम नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्याम नमः अचेद्यो य मदाह्यो य मक्लेद्यो स्वस्य एव च इति मध्यमाभ्याम नमः नित्यः सर्वगतः स्थानु रचलोयं सनातन इत्यनामिकाभ्याम नमः पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशूत सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्याम नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतल करपृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यासः अथ हृदयादिनाश। हाँ बोलो नैनं चिन्तन्ति नैनं दहति पावकम् इति हृदयाय नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा अचेद्यो य मदाह्यो य मक्लेद्य स्वस्य एव च इति शिखायै वसत नित्य सर्वगतः स्थानु रचलोयं सनातन इति कवचाय हुम् पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वसत नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इति अष्टाय पाठ श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग। अभी श्लोक में बोलूंगा, आप एक एक पाद सब बोलेंगे आगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं बोलो। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मस्तादशाध्यायिनी। मम भक्त्वा मनुसंतधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। आप शीघ्र बोल सकते हैं, किंतु यहाँ सामूहिक पाठ में ये ध्यान रखना, मिलकर बोलना, कोई बहुत आगे चल जाना ठीक नहीं, बोलते समय पूरा नहीं हुआ कोई शुरू कर देना ऐसा नहीं, ये करना है, ये अभ्यास करना है, ये भी भक्ति के अंग है। भक्ति करते तो सब मिलकर पाठ करना, ये सब का उद्देश्य होना चाहिए। कोई पाठ करते से उसको आगे चल जाएंगे, अन्य को विक्षेप नहीं हो, ठीक करना चाहिए, हमेशा ध्यान करके करना चाहिए। कोई आगे चला गया तो धीरे पीछे आएगा, और कोई पहले बोल देते, कुछ लोगों की आदत है कोई श्लोक पूरा किया बोल देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य को विक्षेप नहीं हो, स्वयं में अपने विक्षिप्ता नहीं हो, शांति से करें। इसका अर्थ मैं बताता हूं एक एक श्लोक का, फिर पाठ करेंगे। इस श्लोक को बोलो, सब मिलकर मेरे साथ मिलकर बोलो, बोलो। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मस्तादशाध्यायिनी। मम भक्त्वा मनुसंतधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। ये देखो भगवान गीता क्या है, पार्थाय प्रतिबोधिता। पार्थ अर्जुन के लिए स्वयं भगवता, स्वयं भगवता नारायणेन प्रतिबोधिता। ये गीता को बताया किसने, गीता भगवान नारायण स्वयं बताया, किसको बताया, पार्थाय अर्जुन को। और इसको बनाया किसने, वो तो बताया खिलाया, व्यासेन ग्रथिता, व्यास जी ने गुथा, ये माला है। पुराण मुनि ना, पुराण के मुनि है, कहा ये बताया, ये भगवान ने उपदेश किया, मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में। सब लोग कहते हमारे पास समय कहाँ है, हम तो गृह, हमारे पास समय कहाँ है, समय का अभाव है भगवान का भजन करने के लिए। भगवान गीता का उपदेश कहाँ करते हैं, महाभारत युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में भी भगवान उपदेश करते हैं। और समय का क्या अभाव, युद्ध क्षेत्र में आप है क्या कभी, युद्ध क्षेत्र में कैसे है, मरने मारने का समय वहां गीता का उपदेश करते हैं। तो अर्थात किसी भी समय शास्त्र उपदेश सुनने का है, अवश्य समय होना चाहिए। गीता का उपदेश भी इसी समय में करते हैं, कैसे भी समय अभाव क्या है, अब क्या अभाव है, कोई काम है, सब काम को छोड़कर इसी में लगना पड़ता है। अभी युद्ध करना पीछे पहले इसको उपदेश सुनते, भगवान कहना चाहिए तुमको आगे उपदेश करना, पहले युद्ध करो। तो अर्जुन ने कहा प्रथम अध्याय शो करता है, उसे है डांट पटकार भाग, ये क्या बोलता है, युद्ध करो, मैं बाद में बताऊ, बोलो ऐसे कहता है, मैं जो कहता करो, चलो आगे। कोई पूछेगा तो बच्चे कुछ पूछे, अरे आगे चलो, डांट पटकार कर देते, बच्चा भी चल जाता है डर करके, नहीं तो थापड़ लगा दिया। ऐसा नहीं किया, उपदेश किया, अर्जुन दुख है, दुख दूर किया, शांत हुआ, तब युद्ध में लगा। तो उपदेश ही जब जिज्ञासा होती जानने के लिए, और यदि कहीं उपदेश प्राप्त होता है, जिज्ञासा नहीं होगी प्राप्त हो तो ग्रहण करना है, उसमें नहीं बोला समय नहीं समय नहीं, ये सब उपदेश ग्रहण करके आगे युद्ध क्षेत्र में। मध्य महाभारतम, ये कैसा है, अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत रूप अमृत को वर्षा करने वाली। ये गीता क्या करती, वर्षा करने वाली वर्षिणी, अमृत वर्षा करने वाले, वर्षा में तो मेघ में से पानी गिरता है, अमृत वर्षा करने वाले। अमृत क्या है? अद्वैत ही अमृत है, अद्वैत रूप अमृत को वर्षा करने वाले। और उद्वैतवादी लोग द्वेष करेंगे, देखो अद्वैत नाम ले लिया, अद्वैत नाम हम लेते हैं, जगत शंकराचार्य ने लिया, ये महाभारत में व्यास जी ने दिया, अद्वैत रूप अमृत उसका वर्षा करने वाले कौन है? गीता है ये गीता। भगवतीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी, इसमें कितना अध्याय है? अठारह अध्याय वाले ये भगवती गीता है, उसको ही संबोधन करते हैं। मंब अम्ब हे अम्ब, अम्बा का संबोधन अम्ब होता माता, गीता माता है। हे अम्ब त्वाम अनुसंधामी, मैं तुम्हारा अनुसंधान करता हूँ, तुमका स्मरण करता हूँ, तुम्हारा ध्यान करता हूँ, तुम्हारा चिंतन करता हूँ, अनुसंधान करता हूँ। किसका? भगवद गीता का। हे भगवद गीते संबोधन, हे भगवद गीते, गीता का संबोधन गीते, रमा का रमे, हे भगवद गीते। अब भवद्वेषिणी त्वाम अनुसंधामी, तुम कैसे हो? भवद्वेषिणी, आप भी द्वेष करने वाले है द्वेष करने वाले तो कोई खुश नहीं, ठीक है, किसको द्वेष करते हैं? भाव संसार को द्वेष करने वाले, भाव द्वेषणी, ये भाव का द्वेष करने वाले। कोई द्वेष करते है, भगवान भी है ना, मुरारी, मुरारी है ना मधुसूदन, भगवान का नाम थे, मधु को मारा, मुरु को मारा, तो भगवान के नाराज होते हैं, अभी शत्रु है कंसारी, कंसारी कामारी सो नाम लेते, भगवान का नाम लेते ना, कंसारी है कामारी है, कामारी कौन है? शिव जी। और कंसारी कंसे कारी कंसारी, और ये शत्रु कामारी कंसारी मुरारी, ये सब नाम भगवान का नाम है, वो शत्रु है ना। नहीं, गंगा जी का कोई भक्त तो करता है तो मैं बड़ा पापी हूं, पापी हूं ना, तो मैं आप साथ भजन करता हूं, मेरे पर कृपा नहीं करता, क्या आप डरते हैं कि मेरे पाप आपके शरीर में आप में आ जाएगा? क्या आपके पैर में तो बहुत पाप है, क्योंकि बहुत पापियों के आप उद्धार करते मारते हो ना, पाप को नष्ट करते हो ना, सारे पाप को नाश करने वाले पाप आपके पैर में है, आपके चरण में कौन सा पाप है? सब प्राणियों के पाप को नाश करते हो ना, तो आप भी तो पाप को नाश करते हो ना, पापनाश पाप संगे, पापनाश पाप के साथ मेरा पाप कहाँ रहेगा? तो आप क्यों डरते हैं कि आपके पैर मेरे पाप से कीचड़ हो जाएगा, मैला हो जाएगा, आप मेरे ऊपर क्यों पानी नहीं रखते हो? पाप आपका चरण मेरे ऊपर रख दो, आपके चरण मुझे रखो, क्या आप डरते हैं क्या कि आपके चरण में मेरे पाप जाकर के आपके चरण को दूषित कर देगा? कहते नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके चरण में तो बहुत पाप है, इतने पाप के साथ मेरा पाप रहेगा ही नहीं। कौन सा पाप है? आप पाप को नाश करते हो ना, नहीं, पाप को नाश करने वाले से जो पाप होगा वहां मेरे पाप कहां रहेगा? पाप तो भक्त हो जाएगा, तो आप क्यों डरते हो कि मेरे पाप आपके पैर को दूषित कर ले? समझ आता है कुछ? भक्त भाव से कहता है गंगा माता को, आप के चरण में मुझे ले लो, मेरे पर चरण रख लो, ऐसे करने पर कृपा क्यों नहीं करते हो? क्यों आप डरते हैं कि मेरा बहुत पाप है, इसे आपका चरण दूषित हो जाएगा मुझे छोड़ने से? आपके चरण में तो इसे सामर्थ्य है, आपका चरण तो सब पापों को नष्ट करने वाला है। कितने पाप को नष्ट किया है? मैं थोड़ा पाप किया तो आप इतने पाप नष्ट किया, आप भी कम है क्या? तो आपके चरण में जो सामर्थ्य है तो उनके साथ मेरे पाप कहां रहेगा? क्यों डरते हो? अतः मैं जब जल्दी ले लो। तो ऐसे नाश करने वाले भगवान गीता कौन है? भवद्वेषिणी, संसार को द्वेष करने वाले, ऐसे करके उनको संबोधन करते हैं। अब इसको सब मिलकर प्रेम से बोलो, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते मस्तादशाध्यायिने मम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणि। देखो भगवद गीते संबोधन है, अम्ब भी संबोधन है। ये अम्ब हे भगवद गीते त्वाम अनुसंधानी आप भवद्वेषिणी त्वाम अनुसंधानी भव को देश करने वाले आपका मैं अनुसंधान करता हूँ और आप कैसे उनका विशेषण है आप अद्वैतामृत वर्षिणी है अद्वैत अमृत को वर्षा करने वाले आप भगवती भगवती अनुसंधानी अनुसंधानी क्रिया का ये सब कर्म है नारायण न स्वयं भगवता पार्थाय प्रतिबुद्धिताम तवाम व्यासेन ग्रथिताम महाभारत मध्य महाभारतम पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिताम त्वाम अद्वैतामृत वर्षिणी त्वाम अनुसंधानी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी सब के त्वाम हे भगवद गीते अनुसंधानी भगवदी सब त्वाम आपको अनुसंधान करते हैं सब विशेषण है जिस गीता का प्रारंभ करते पहले गीता जी का नमस्कार किया उसके बाद व्यास जी का नमस्कार है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप देखो कुछ लोग सोचते हैं ये श्लोक हमको याद है पुत्र क्यों नहीं लेंगे याद है तो बोलो बोलते समय नहीं बोलते कोई कुछ सोचते हमको ही बच्चे ही थोड़ा बोले छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अरे बच्चे कौन नहीं है बच्चे हैं ना हमारे सब क्या है क्या नहीं है सब बच्चे हैं ना है? क्या नहीं है बोलो बड़े नहीं बड़े नहीं क्यों बोलते सब बच्चे कोई मरे नहीं सब बच्चे हैं बच्चे नहीं बोलो अभी बच्चे नहीं बोलना श्लोक उच्चारण करे श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ बोलना उच्चारण करना ऐसे में बड़ा छोटा नहीं सब भगवान के सामने सब बराबर है अपने कोई सोचे हम बहुत बड़े ना उम्र में बड़ा है ना धन से बड़ा है ना ज्ञान से बड़ा है कोई नहीं ज्ञान से बड़ा नहीं होता है ज्ञान से तो एक अद्वितीय तत्व हो गया अद्वितीय सब बराबर हो गया बड़ा किसे होगा यदि अपने से मानता है मैं बड़ा हूं तो मेरे से छोटा है यदि छोटा बड़ा भेदभाव है तो अब अद्वैत ज्ञान हुआ नहीं ज्ञान होने के बाद किससे बड़ा होगा बोलो कोई है अगर कोई हो तो किससे बड़ा होगा कोई है ही नहीं किससे बड़ा होगा बड़ा छोटा कुछ नहीं सब एक ही तो ज्ञान इतना बड़ा नहीं अज्ञान अज्ञान में बड़ा हाँ अज्ञान में बड़ा कोई मांस होता है अज्ञान ही बड़ा मानता है ज्ञानी अपने को बड़ा मानेगा नहीं कौन मानेगा अज्ञानी अहंकार अजय मुमुक्ष बड़ा मानेगा तृणाद अपनी सुनीचे नाम तरोरी बस तीन का तीन से भी नीचे बन करके भजन सदा हरि भगवान का भजन करने के कैसे भजन करना चाहिए तृणाद अपनी सुनीचे नाम तीन से भी नीचे घास चाहिए नीचे तरोरी बस सही सुनना पेड़ है जन सहन करने वाले पेड़ गर्म होने पर कहां जाते हैं एसी चलाते हैं ठंडी के समय कहीं चले जाते हैं कहां जाते हैं धूप लगने पर सहन करना बरसात में प्रसन्न सर्व करते कोई कुटार जाकर लेकर छेदन करेगा पेड़ भाग जाते हैं नहीं छेदन करता है तो उठाते सहन काटो और तुरंत दर्शन दिया संत का दृष्टांत देने के लिए कुठार लेकर चंदन वृक्ष को काटो चंदन वृक्ष क्या उसको दुर्गंध देगा सुगंध देगा काटने वाले कुठार में भी सुगंध आ जाएगा ऐसे तरु वृक्ष सहन करने में है और अमानिना मान देना अपने को बड़ा नहीं मानना दूसरे को सम्मान नहीं देना अमानिना मान देना मान ददाती थी मान सबको सम्मान करता है सब में परमात्मा को देखो इसलिए हम जो कहते हैं ना कहते हैं नमो नारायणाय सर्वत्र नारायण देखकर नमस्कार को कहते नम शिवाय सबको नम शिव देख सोचो ये परमात्मा कहाँ है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वत्र है, और सब क्या है, सर्वम वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ये तो आएगा सब वासुदेव, तो परमात्मा का नमस्कार करना है, तो सर्वत्र परमात्मा है सबको, इसलिए अमानिना मान देना, सबको सम्मान करना, परमात्मा दृष्टि से करो, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा, हरि भगवान के भक्तों को चाहिए अपने को बड़ा मान्य कर, नहीं सामान्य बनकर बराबर मानकर सबको समान, मंदिर में जाते समय बड़ा चढ़ा कुछ है, बड़ा उम्र में कोई बड़ा मालूम है, सब अनादि जीवो किसके अब कब से मालूम है अनादिकाल से, और बाद में कौन आया जीवो, आपके पहले कौन था, अनादि के पहले कोई था क्या, नहीं सब जीव अनादि है, सब बराबर है, इसी सारे में छोटा बड़ा व्यवहार में बड़े को सम्मान करना ठीक है, किन्तु बड़ा हो गया तो अपने बड़ा बड़ा नहीं मानना, श्लोक बोलो फिर एक बार सब मिलकर, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता व्यासेन गतिता पुराण मुनिना मध्ये भारतम अद्वैतामृत वर्षेने भगवती मस्तादशाध्यायिनी मम त्वामनुसंदधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। आगे नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येना त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। नमोस्तु ते हे व्यास, संबोधन संस्कृत में से नाम लेकर के क्या जाता है, हे व्यास संबोधन, विशाल बुद्धे अति विशाल बुद्धि वाले, ते नमो अस्तु, ते मतलब तुभ्यं तुमको, नमः नमस्कार हो, नमोस्तु ते फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र, संबोधन है आपका नेत्र कैसा है, अरविंद अरविंद आयत पत्र नेत्र फुल्ल अरविंद, फुल्ल प्रफुल्लित अरविंद कमल है, कमल के जैसे विस्तार आयत पत्र, कमल के पत्र के जैसे विस्तार नेत्र वाले गोल गोल बड़े बड़े चक्षु वाले व्यास जी को होते कमलायन कमलानयन पद्मनयन भी नाम कहते कमलानयन, आपके चक्षु बड़े बड़े है फुल्ल अरविंद एक कमल का आयत विस्तृत, इसके विस्तृत पत्र नेता आपका नेत्र आदि सब इतने बड़े बड़े पत्र है मुख कमल नेत्र कमल ऐसे करके संबोधन है, ये ना ये विशाल व्याची कौन है, जिन्होंने ज्ञान में प्रदीप प्रज्वलित, ज्ञान में प्रदीप को प्रज्वलित जलाया, किसको जलाया, प्रदीप दीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन करते ना, व्याज ने कौन से दीप जलाया, ज्ञानमय दीप, ये ज्योतिर्मय जीव ये ज्ञानमय दीप है, दीप जलाने के लिए कुछ तैल आदि चाहिए नहीं, भारत तैल पुनः हम दीप में तैल भारत रूप तैल, भारत रूप तैल महाभारत रूप तैल से भरा हुआ ये ज्ञानमय प्रदीप को आपने प्रज्वलित कराया, दीप तो था जलाया नहीं था, प्रज्वलन करते ना आकर लगाते हैं, ये महाभारत में था ज्ञान, महाभारत तैल पुण्य प्रदीप को आपने प्रज्वलित प्रकाश कर दिया और ज्ञान में प्रदीप है, श्लोक बोलो नमो स्तुते व्यास फिर मैं बोलता हूं आगे कभी नहीं बोलना, श्लोक मालूम है, ये नहीं कि ये श्लोक आपको मालूम नहीं मैं सिखाता हूं ऐसा नहीं है, सब एक साथ मिलना है, कोई कोई किसके है पहले बोल देते हैं ऐसा नहीं बोलना, मिलकर बोलना एक साथ चलने के लिए दौड़ने वाले को भी थोड़ा गति कम करनी पड़ेगी और बहुत गति कम करने वाले थोड़ा पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा, मिलकर चलना ये भी सीखना पड़ता है, इसे आगे नहीं बोलना, कभी कभी आगे बोल देते आगे नहीं बोलना, आगे देखो प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पानये। देखो कौन शुरू कर दिया, मैं इसे थोड़ा विराम देता हूँ, बीच में थोड़ा धैर्य चाहिए। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। बोलो ये भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण नमस्कार करते, अभी भगवान श्री कृष्ण क्या करते, गीता अमृत दुहे, गीता अमृत दोहन करने वाले, ग्वाला गाय से दूध निकलता है। अभी कृष्ण भगवान गीता रूप अमृत को दोहन कर, गीता अमृत भगवान श्री कृष्ण कैसे ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में स्थित है। तोत्र वेत्ते ही का पाने, वहां घोड़ा आज लेकर के दोहन करने की आवश्यकता नहीं, उस है चाबुक क्या कर रहे थे, उस समय रथ चला रहे सारथी, सारथी होने के लिए शंख चक्र गदा पद्म की आवश्यकता नहीं, क्या लेना पड़ेगा, घोड़े के लिए चाबुक है, तोत्र लगाओ लगाओ तत्र वेत्रैक वेत्रैक पाणि, तत्र चाबुक है, वेत्र वेत है लाठी, वो लगाम लोगो ये हाथ में रख करके। प्रपन्न पारिजात आये, पारिजात को प्राप्त किए हुए भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार, कृष्णाय नमः नमस्कार है, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार, उनका थोड़ा विशेषण दे दिया, जो सारथी बन करके हाथ में चाबू को लेकर दर रखे ज्ञान मुद्रा में स्थित है, क्योंकि अर्जुन को उपदेश करते हैं इसे हाथ से चाबू को पकड़े, लाठी पकड़े और इसे हाथ से ज्ञान मुद्रा के उपदेश करते हैं, उनको नमस्कार। श्लोक फिर बोलो, प्रपन्न पारिजाताय ये बहुत को मालूम है किंतु आगे दौड़ना नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हाँ बोलो, वसुदेव के पुत्र है वसुदेव सुतम, किंतु वो देव है, स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है। वसुदेव सुत कौन से खाली ना नहीं सुना, देव दिव दीप प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप है। और कंस चाणुर मर्दनम, कंस और चाणुर को मारने वाले, ऐसे बड़े बड़े योद्धा खत्म कर दिया। देवकी परमानंदम, देवकी के परमानंद देने वाले, उनको मैं नमस्ते, वंदे कृष्ण कृष्ण वंदे। अभी भगवान श्री कृष्ण वंदना करते क्यों, जगत गुरु, ये जगत के गुरु है, गुरु वंदना आवश्यक है, जगत गुरु। अभी भगवान गुरु रूप से पहले तो सारथी बता दिया, उपदेश करते हैं, किंतु अभी कहते हैं जगत गुरु वंदे, वंदन करता हूं। श्लोक बोलो, वसुदेव सुतं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। सूर्य से बोला मिल करके भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेन वाणी करने एक नदी रूप से वर्णन की गई राणा नदी युद्ध को न राणा रूप युद्ध युद्ध है महाभारत युद्ध कोई सामान्य नहीं। राणा रूप नदी को पार कर लिए पांडव ही उत्तीर्ण। वो नदी कैसे बताते हैं पार करने के नौका से पार किए नवा चलाने वाले केशव भगवान ने कई बार तो केवट है ये नदी पांडव से पार कर ली। नदी कैसा है सामान्य नदी महाभारत नदी भीष्म द्रोण तटा नदी के दो तटे होते हैं एक तरफ भीष्म पितामह एक तरफ द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु बिना इच्छा नहीं मरेंगे कोई मार नहीं सकता है इतने बड़े वीर को भीष्म के नाम से कहने का नहीं और द्रोणाचार्य जो गुरु है सब उनके शिष्य है। ये दोनों तट है राणा नदी दोनों तरफ दो तट उसके बीच में सब अर्थात तट के अंदर ही नदी है दोनों तट के अंदर नदी है तट नदी को अपने अंदर रखते हैं उसको भी पार कर लेना एक तट में बीच में एक तरह द्रोणाचार्य उसको पार कर लेना राणा नदी और जल भी उसमें है जयद्रथ जला जयद्रथ वो काम नहीं जल के समान है जयद्रथ जल जिसमें गांधार नीलोत्पला गांधारी के पुत्र गांधार नील कमल खेले हुए हैं नीलोत्पल उसमें है गांधारी के पुत्र गांधार। शल्य ग्राहवती शल्य उसमें ग्राह के समान है ग्राह वाली नदी है शल्याचार्य के उनके पास भी गए थे कभी कम नहीं है ग्राह मगर तो जिसको पकड़ लिया गया ग्राह गजेंद्र हाथी को पकड़ लिया मगर गजेंद्र मुख्य क्या ध्यान किया और कृपेण वहानी वहना कृपाचार्य वहाने वाले है नौका चलाने वाले जल चलाने वाले कृपेण कृपाचार्य उसको बहाते हैं। कर्ण ने वेलाकुला कर्ण क्या करते है पानी को इतने से हिलाते हैं तो दोनों तट में जल इधर उधर हो जाता है वेलाकुला भाई गुवे तो पानी विशेष करेंगे तो जैसे समुद्र में तरंग है ना से जल ऐसे हिलाएंगे तो एकदम इधर उधर वेला दोनों तट भयंकर हो जाते हैं बीच में पानी से हिलाते तो दोनों तट हिला कैसे देखो दोनों तरफ तो एक तरफ भीष्म पितामह उधर द्रोणाचार्य दोनों तट है बीच में जल जयद्रथ है नील कमल गांधारी के सब पर्याप्त है सब ग्राह उसमें सल एक नहीं कितने है कृपा उसको बहाते कर्ण उसके हिलाते हैं। अश्वत्थाम विकर्ण घोर में अश्वत्थाम विकर्ण आदि घोर मकर है मगर है मगर ऐसे बड़े बड़े है दुर्योधनावर्तिनी पानी में नदी में कभी देखे तो उसमें आवर्त होते हैं भ्रमर कहते हैं ऐसे भ्रमर होता है पानी से गेम दिखा कर ये भ्रमर के अंदर कोई पहुंच गया वहां गंगा तट पर है एक स्थान पर है बहुत पानी से घूमता है देखते देखते कोई साथ मर गया कितने लोग कोई नहीं कितने बार मर गए स्नान कर अंदर घुस जाते धरते थोड़ा जानते क्यों इतने जोर पत्थर है पानी से इधर आने के बाद ये आगे नहीं जाकर इधर आ गया फिर ऐसे ऐसे घूमता है घूमते समय लगता है कि मैं तैरकर आ जाऊं इधर आ गया फिर उसको पता चल जाते आना चाहता नहीं आ पाता है इधर तक आया चाहता है तट पर आ जाएगा किन्तु इधर नहीं आ पाते उधर फिर चल जाता है फिर दूर चला गया सब लोग देखे फिर उसको मालूम हो गया कि साधु ऐसे हुआ, फिर बीच में हो गया तो हाथ कर करता है ऐसे ऐसे होकर के ठीक बीच में जब आएगा ना उसके अंदर डूब जाएगा, अपनी इच्छा से नहीं उसको अंदर घुसा देगा, घुसने के बाद जाकर निकलेगा कितने दूर में, तब तक क्या होगा, यह खत्म हो गया, देख नहीं पाएंगे कहाँ निकलेगा, दिखेगा नहीं, पांच सात व्यक्ति स्नान करते खत्म हो गई, ऐसे भ्रम रहे। ये पंचदशी माता है ऐसा ही, जायन तो ब्रजत ब्रजन तो जन्म तो जन्म लवन तो नैव निर्वृति, ये के पंचदशी माता है, ऐसे एक भ्रमर से निकला पानी में से, फिर जाते समय और एक भ्रमर आ गया, फिर उसमें कीड़ा, इसी प्रकार ये कैवर तक है, ए नहीं दुर्योधना आवृत्ति नहीं, दुर्योधना आवर्त भ्रमर जैसे वो भी कम नहीं है। सा रण नदी पांडवे ही उत्तीर्णा, ऐसे रण नदी को उत्तीर्ण हो गए पांडवों के द्वारा, किसके कारण, कैवर तक केशव, केशव है केवट बन करके नौका चलाने वाले, उनके ज्ञान नौका चला करके उनको पार करा दिया। श्लोक बोलो, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेन वहनी। पाराचार्य वच सरोज ममल गीतार्थ गंधोत्कटं नानाख्यान ककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहर पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल तद्ध्वंसिनः श्रेयसे। रुक जा, हाँ बोलो, पाराशर्य वच सरोज ममलं गीतार्थ गंधोत्कटं नानाख्यान ककेतर हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन सत्पदैरर पेपीयमानं मुदा भूयात भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। हाँ कोई बोलते हम तो इसे और अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है बहुत ही अच्छा बोल सकते जरूर है, किन्तु सब आपके साथ नहीं बोल सकते हैं, इसे सब को बुलाने के लिए एक सारल सा है थोड़ा सा बोले, ऐसा नहीं से हम तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है हमारे शीघ्र बोल सकते ये तो है, किन्तु सबके साथ बोलते समय जैसे सब बोल सकते इसे बोले, अच्छा बोलने वाले को इसके साथ बोले कोई हानि नहीं, इसे सबको बोलना चाहिए और जोर कर बोलना चाहिए, इसे जैसे पता चले बोलते हैं, क्योंकि इसे जोर से नहीं बोलते हैं ना, देखने से पता चल जाता है, अभी बिल्कुल बोलो, सर्य वच सरोज एक कमल है, वो कमल हमारे लिए कलिमल प्रध्वंसी भूयात, कलिमल को ध्वंस करने वाले भारत पंकजम, ये महाभारत रूप पंकज, महाभारत निकला पंकज है। वो कौन सा है? पाराशर्य वच, पराशर्य के पुत्र कौन है? व्यास जी हो गया पाराशर्य, उनके वचन है व्यास जी के वचन। सरोजम कमल है, अमलम शुद्ध है, ये भारत महाभारत के कमल है। महाभारत जो कमल है भारत है, भारत पंकजम अंतिम पद में दियो, देखो भारत है पंकज कमल के समान। भारत पंकज कैसा है? वो सरोज है, उनका नाम है अमल शुद्ध है। कौन भारत है? जो बाजी का वचन है। वो क्या विशेष उसमें है? गीतार्थ गंधोत्कटम, गीता के अर्थ उसके उत्कट गंध है। पुष्प बड़ा सुंदर हो, सुगंध नहीं है, उसको इतने आदर नहीं करते हैं, देखने के लिए होता है, किंतु पूजा में पूजा के लिए सुगंध पुष्प। कोई छोटे चंपक होता है तो चंपा लेते शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए, और कोई कोई छोटे छोटे है रात की रानी कहते, बहुत सुगंध रात को होते हैं, तो वो उसको भी लोग मानते हैं। यहाँ से सुगंध है कौन? गीता अर्थ ही गंध है, सामान्य नहीं, उत्कटम अत्यधिक दूर तक उसका गंध फैल जाते, गीता अर्थ गंध उत्कटम। गीता रूप गंध महाभारत यही के सुगंध से पूरा गीता कमल सुगंधित हो जाता है। गीता उसमें से आरंभ, फूल में केसर होता है, इसे नाना आख्यान का केसर, पुष्प में केसर होता है ना, इसे नाना आख्यान। महाभारत में बहुत आख्यान का बहुत कथा है केसर है। हरि कथा संबोधना बोधितम, हरि कथा संबोधन के द्वारा प्रकट खिलता है, सूर्य के द्वारा कमल खिलता है। भगवान हरि के कथा ही विचार है, सम्यक बोधन ज्ञान कराना, हरि कथा और संबोधन ज्ञान के द्वारा खेला गया ये कमल। लोक में इस प्रकार क्या किया जाता है? अहरह पेपीय मानम, मुदा पान करते रोज बड़े खुश होकर के, अहर प्रतिदिन कौन पान कर देंगे? पुष्प में तो भ्रमर बैठकर पान करता है, यहां भी भ्रमर है। षट पद भ्रमर को कहते हैं, षट पद ही। ये भ्रमर कौन है? सज्जन, सज्जन रूप भ्रमर पान करते है। सज्जन है जो सत्पुरुष है, सन्मार्ग में चलने वाले, परमात्मा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले सज्जन। सज्जन रूप भ्रमर के द्वारा अहरह पेपीयमान पान किया जाता है रोज रोज। पेपीयमान का था वृषम पीयमान, बहुत पीते ही रहते भ्रमर, पुष्प से रस लेने वाले भ्रमर थक जाता नहीं, एक पुष्प दूसरे पुष्प भ्रमर लेता है। इसी प्रकार इसका पान तो सज्जन रूप भ्रमर और रोज रोज पान करते ही रहते, विषम पीय मान मुदा प्रसन्न होकर खुश होकर के पान करते है। भूया ऐसे जो भारत पंकज महाभारत रूप कमल न का अस्माग हमारे श्रेय से श्रेय के लिए कल्याण के लिए हो, जो कलिमल प्रध्वंसी कली रूप मल को ध्वंस करने वाले कौन? महाभारत पंकज महाभारत रूप कमल है। वो कमल कौन है? व्यास जी के वचन महाभारत है। सारे जो सुगंध पुष्प है उसे सुगंध कौन है? गीतार्थ उत्कट गंध, नाना केसर है नाना आख्यानक, हरिकथा संबंध से प्रकट हो गया। सज्जन पद सज्जन सत्पद भ्रमर के द्वारा रोज पान किए जाते हैं। ऐसा जो पंकज भारत रूपम पंकज हमारे कल्याण के लिए हो, महाभारत स्वयं महाभारत की वंदना है, कलिमल को ध्वंस करने वाले। श्लोक बोला मिलकर के, पाराशर्य वच सरोज ममल गीतार्थ गंधोत्कटं नाना ख्यान केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन सत्पदैर पेपीयमान मुदा भूयाद भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसिन शेयसि मुकं करोति वाचालं। पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। बोलो मूकं करो परमानंद माधवम अहम वंदे। जब परमानंद सर्वे माधव भगवान श्री कृष्ण उनको मैं नमस्कार कर वंदना करता हूं उनकी। कैसे यत कृपा जिनकी कृपा मूकम वाचालम करोति पंगुम गिरिम लंघयति। जिनकी कृपा ही केवल मूक को वाचाल बना देता है, मूक जो नहीं बोल पाता है उनकी कृपा मात्र से वाचाल हो जाता है। इसे वाचाल शब्द का अर्थ वाच से आलच प्रत्यय होता है। आल जाल टू बहुवाचनी, बहु बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। वहां भारतीय करते भारतीय कौन है नहीं व्याकरण में कात्यायनी कुत्सित है वक्तव्यम। कुत्सित बहुत बने के लोग वाचाल कहते हैं। अच्छा बोलने वाले को वाचाल नहीं कहते हैं। अच्छा बोलने वाले तो भाग्य में होता है। कुत्सित बहुवत कुत्सितम बहुवत वाचाल। यहां कोई विद्वान विचार करते मूक को भगवान वाचाल बना देंगे। मूक तो था कोई बात नहीं, उसको बनाए वाचाल मतलब कुत्सित उल्टे पाल्टे कुछ ना कुछ बोलेगा ऐसा बनाएंगे। भगवान कृपा करेंगे तो ऐसे बनाएंगे। तो क्या दिया मूकम करोति वाचालम। ये यहां बहुत विषम स्थल पर मैं बताता हूं। ये बड़े बड़े विद्वान हुआ इसका अर्थ उनको पूछो मुंह को इसलिए वाचाल बना दिया। वाचाल बनाए तो कुत्सित भारतीय कार्य कुत्सित बहु आलज आट चौ बहुभाषिणी। आलज और आटच वाचाल वाचाट बनता है। अब भारतीय कार्य कुत्सित है जो वक्त में कुत्सित हम बहु बताती कुत्सित निकृष्ट उल्टे पाल्टे बोलने वाला। तो मुंह को भगवान ऐसे करते तो उल्टे पाल्टे बुलाने वाले। यहां वाचा अलम करोती वाचालम नहीं करोती वाचा वाणी के द्वारा अलम करोती भूषित कर देते। मुकम वाचा अलम करोती मुक को वाणी से भूषित कर देते। वाचा अलम करोती वाचालय के पता नहीं करना वाचा तृतीयांत वाचा अलम करोती अलंकार अलंकार होता है ना भूषण अर्नामेंट कहते ना अलंकार अलंकार को अर्नामेंट कर दे अलंकार अलंकार भूषण अलम कर दे अलंकार होते हैं अलम प्रयोग करी अलंकार होते हैं तो भूषित करते हैं। किसके द्वारा वाणी के द्वारा किसको भूषित कर दे मुख को वाणी से भूषित कर देते हैं। वाणी से वाघ विभूषण हो जाता है। मुख तो जथा भगवान को क्या कर देंगे वाघ विभूषण हो जाएगा उसके वाणी से भूषित हो जाएगा। इसे वाचा अलम करोती वाचालम करोती नहीं मुकम वाचा अलम करोती। और पंगुम गिरिम लंघे थे जो पंगु चल नहीं पाते पर्वत लंघा देते। यत कृपा ऐसे भगवान की वंदना करता हूं। श्लोक बोलो मुकम अथ गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। बोलो गीता इदम पुण्यम गीता शास्त्रम। हाँ बात नहीं करना बीच में है पुराने लोग को ऐसे विक्षेप नहीं करना। आपके बात के द्वारा अन्य को जो विक्षेप होता है तो पाप आपको लगेगा। कोई भक्ति करता है उपासना करता है आप कुछ करो उसके यदि विक्षेप होगा तो पाप को लगेगा नहीं। कोई सत्कर्म करता है, उपासना भक्ति करता है तो लोग उसकी सेवा करते हैं। महात्मा लोग क्या किसको अपने भजन करते तो भक्त लोग उनको खिलाते पिलाते रहने की व्यवस्था करते हैं। और वो त्रेतायुग में मुनि ऋषि लोग यज्ञ आदि करते थे, अश्व लोग उनको नष्ट करते थे ना। कोई भजन साधन करते समय आप उल्टे पहले बात करते रहो, उनको विक्षेप होता तो पाप लगेगा। इसलिए स्वाध्याय के समय सत्संग में ये नहीं करने कि आपके द्वारा किसको विक्षेप नहीं हो, ये ध्यान देना। ठीक है आप पुराने आपको कोई कुछ नहीं कहे, इसका अर्थ नहीं कि दूसरे को विक्षेप करना। हमेशा ध्यान रखे किसको दूसरे को विक्षेप नहीं हो। आश्रम अनुशासन इससे चलता है। आप स्वयं ध्यान करो या नहीं करो, ये नहीं कि कोई नहीं करते हैं, करने वाले हो तो उनको विक्षेप नहीं करना। ये श्लोक फिर बोलो, गीता यह इदम पुण्यम गीता शास्त्रम पठेत प्रयत पुमान। यह पुमान प्रयत शुद्ध होकर के, यह पुमान जो व्यक्ति प्रयत शुद्ध होकर के इदम गीता शास्त्र पुण्य पुण्य से युक्त गीता शास्त्र पढ़े तो विष्णु पदम अवाप्नुति। विष्णु के पद को भय शोकादि वर्जित, भय शोकादि से रहित होकर के विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये गीता शास्त्र जो पाठ करे शुद्ध होकर के पुण्ययुक्त गीता शास्त्र का पाठ करे, सब भय शोकादि वर्जित, भय शोक आदि शोक का कारण अज्ञान रहित होकर के विष्णु पर ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। शोक बोलो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। बोलो गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य, शील स्वभाव जिसका ऐसा स्वभाव हो गया गीता अध्ययन, कभी थोड़ा अध्ययन कर लेता नहीं तो स्वभाव होता है गीता अध्ययनशीलस्य। गीताध्ययनम शीलम यस्य, गीता अध्ययन करना जिसका स्वभाव है गीता अध्ययनशीलस्य, जिसका स्वभाव है गीता अध्ययन, ऐसा स्वभाव हो जाए बार बार अध्ययन करते रहे। एक हो गया, और एक प्राणायाम परस्य, प्राणायाम जो जिसका परम साधन, प्राणायाम के द्वारा भी मन शुद्ध होता है। बहुत साधन में प्राणायाम एक बड़ा साधन है, अभ्यास करते गुरु से लेकर के धीरे धीरे प्राणायाम करते करते प्राण को रुकते रुकते मन एकाग्र होता है, ध्यान करते पाप नाश करने के लिए प्राणायाम भी एक साधन है। नैव संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, पाप यह नहीं है पूर्वजन्म पहले अनेक जन्म किए हुए कमे तो पाप नष्ट हो जाता है गीता अध्ययन से। श्लोक बोलो गीताध्ययनशीलस्य मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतांभसि स्नानं संसार मलनाशनम। बोलो मल निर्मोचनम जल स्नान दिने दिने सकृद् गीतांभसि स्नान संसार मलनाश पुंसाम दिने दिने जल स्नानम मल निर्मोचनम। रोज रोज जल स्नान करते शरीर से मल निकल जाता है, निकालते साफ करते हैं। पुंसाम दिने दिने जल स्नान मल निर्मोचनम, मल को साफ करने वाले जल स्नान। किन्तु गीतांबसी सकृत स्नानम संसार मलनाशनम, गीता रूप अम्बस से जल गीता रूप जल में यदि एक बार स्नान कर लिया, डुबकी लगा दिया पूरा, स्नान करते तो पूरा जल, स्नान तो डुबकी लगाकर करना होता है, जब स्नान करते डुबकी लगा लिया तो लगा स्नान, गंगा जी में आओ तो एक बार डुबकी लगा तो आपको लगेगा स्नान किया। गीता में इस प्रकार एक बार गंगा गीता गंगा में डुबकी लगा दिया तो ये नष्ट करेगा मल कौन, संसार मल नाशनम, ये संसार रूप मल को नाश करने वाले। ये संसार क्या है, संसार सम्यक शरणम, अनादिकाल से जन्म मरण भटक रहे, खाली जन्म मरण नहीं, बीच में जरा व्याधि सुख दुख प्रति क्षण क्षण में, जितने भी सुखी समझो किसी को भी कहो उसके अंदर कितने क्या दुख है वो जानता है, बाहर से क्या पता चलेगा। एक क्षण में बिना कारण शब्द में कोई कुछ कह दिया परिवार में अत्यंत प्रिय, तुरंत मुख काला हो जाता है, लाल हो जाता है, बिना कारण हो जाता है ना, नहीं और चलते फिरते क्या हो जाता है, तो बहुत कुछ है। ये संसार रूप ऐसे जन्म मरण चक्र भटक रहा है, ये मल का नाशन करने वाला है, एक बार स्नान कर ले गीता में। इसलिए अभी गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है कि इसको पहले कुछ मालूम नहीं, बहुत को पाठ कर दी इसलिए बताए, अपराह्न में चलाएंगे। जो जिनको ये संसार मल नाशन करना है, स्नान करना है, और यहाँ के तो अभ्यास इस प्रकार हम वहां भी बताते हैं, वहां करे कला शास्त्र में देखो, हाँ ज्ञान यज्ञ चलेगा, इस तरह तो ब्रह्मसूत्र है, साढ़े छह से साढ़े आठ चलता है, दो से चार चलता है, कैसे महात्मा को दौड़ कर समय पर पहुंचते हैं, शांति पाठ आचार्य आने के पहले सब लोग उपस्थित है, ये नियम है, आचार्य उपस्थित होने के पहले आए और आचार्य जाने के बाद जाए, ये शास्त्र का नियम। चलो आप आगे जाने पहले चले गए कोई बात नहीं, आचार्य आने के पहले नहीं, कम से कम शांति पाठ से लेकर के अंतिम तक सुने, रोज सुनने का, रोज यदि सुने पूरा सुने तो ये एक गीता पूरा पाठ करे, पूरा श्रवण करे, श्लोक उच्चारण करेंगे, अर्थ समझाएंगे, और ये अर्थ जो है ठीक पहले भी क्या था जिनको मालूम है, इसके साथ साथ वेदांत का क्या रहस्य है, भक्ति के साथ कैसे समन्वय है, भक्ति के साथ कोई विरोध नहीं, और अद्वैत चिंतन करते हुए भक्ति कर सकते, भक्ति करते हुए अद्वैत चिंतन होगा, ये गीता व्यास जी बनाए भक्तों के लिए, बनाए भक्तों के लिए नहीं बनाए क्या, और उसमें क्या अमृत देते हैं, अद्वैतामृत देते हैं, अद्वैतामृत देते हैं, किसको देते हैं, भक्तों को नहीं, गीता भक्तों के लिए नहीं, भक्त लोग गीता नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण क्या क्या है, श्रुति स्मृति ममे वाक्य, ये करेंगे अपराह्न में भी चलेगा, और जो भक्त है भगवान के भक्त है, गीता के भक्त हो, इसको पूरा सुनने तो लाभ ले सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तं पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।